सवाल ये है कि अहले किताब अगर ईमान न लाएं, क्या तब भी उनसे निकाह हो सकता है? और हमारी कम्युनिटी में अहले किताब कौन लोग हैं? इसकी वजाहत फरमाएं। अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जो आसमानी किताब के मुताबिक उस पर ईमान लाते हों, उसके मुताबिक उनके असल के लिहाज से उनके अकीदे हों और उनकी सोच हो। और आसमानी किताबें अमूमन जो आगे पहुँची, जो मारूफ हुई, अगरचे और भी हैं, तौरात और इंजील दूसरी भी हैं, लेकिन उन किताबों को जानने वाले, पढ़ने वाले वो तो तकरीबन न होने के बराबर हैं जो हैं, या यहूद हैं या नसारा हैं। लेकिन इनमें भी बहुत से वो हैं जो सिर्फ ख़ानदानी एतबार से यहूद और नसारा हैं, हकीकतन नहीं हैं, उनके एतबार नहीं। अहले किताब से मुराद जो वाक़ियतन अपनी किताब को जानते हों और उसके मुताबिक उनके बुनियादी अकायद हों, आखिरत को मानते हों, हिसाब और जज़ा वग़ैरह को मानते हों, अम्बिया को मानते हों, ये तमाम चीज़ें हों और उनको पता हो। अमूमन आजकल जो अपने आप को नसारा, क्रिश्चियन वगैरह कहते हैं, वो ख़ानदानी लिहाज से चले आ रहे हैं, इस वजह से कहते हैं। बाकी उनको न पता है कि बाइबल क्या चीज़ है, न उन्होंने कभी पढ़ी है, न उसके बारे में उनको कोई मालूमात है, तो ये अहले किताब नहीं है। एक तो ये बात हो गई। और फिर इनसे निकाह का मसला, अगर वाक़ियतन कोई सही माने में अहले किताब है तो फिर मसला यह है कि क्या उनसे निकाह करना दुरुस्त है। उसको समझने के लिए पहले बात आ चुकी है, पहले उसको समझने के लिए समझना ज़रूरी है कि इंसान के लिए अपने औलाद को दीन पर रखना ये एक ज़िम्मेदारी है, मर्द की ज़िम्मेदारी भी, औरत की भी है। अब अगर वो किसी मुसलमान से निकाह करता है तो मुसलमान से निकाह करने की सूरत में भी आजकल के हालात में औलाद को ईमान पर रखना और इस्लाम की तालीमात से मुतालिक रखना कितना मुश्किल है वो सब जानते हैं। अगर वो निकाह करता है किसी किताबिया से जो इस्लाम ने जो शरायत करार दी हैं उन शरायत का ख्याल रखते हुए किताबिया से निकाह करता है, तो फिर अब बाहर माहौल उसके पास, उस बच्चे के पास, बच्चा जब बड़ा होता है तो बाहर उसके पास माहौल नहीं है कि इस्लामी मुल्क नहीं है जहाँ पर वो अजानें और नमाज़ें और ये सब चीज़ें देखें। घर में माँ मुसलमान नहीं है तो वो उसको ज़ाहिर है कि इस्लाम नहीं सिखाने वाली। बाप के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो उनको वक्त दे और सिखाए, ज़ाहिर है माँ ज़्यादा वक्त देगी। तो गैर इस्लामी मुल्कों में तो जायज़ ही नहीं है, इस वजह से कि औलाद को इस्लाम पर रखना तकरीबन नामुमकिन है। इस्लामी मुल्क हो और इस्लामी माहौल हो और इस्लाम ही का गलबा हो, उन हालात में इजाज़त दी गई है बशर्ते कि मर्द ये ज़िम्मेदारी उठाए कि औलाद को ईमान, इस्लाम वग़ैरह की तालीमात सही तौर पर वो दे सकेगा, वरना इजाज़त नहीं होगी। तो ये चीज़ है जो आम तौर पर जहन में नहीं रहती कि इस्लामी माहौल, इस्लामी मुल्क होना और इस्लामी माहौल होना उससे फ़र्क पड़ता है और मर्द की ज़िम्मेदारी क्या है। इसको समझने के बाद ये मसला, ये दोनों साथ जुड़े हुए मसले, इन दोनों को साथ समझना ज़रूरी है। अच्छा, फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या पढ़ना अफजल है? फ़र्ज़ नमाज के बाद इंसान पहले तो बाज़ रिवायतों में तकबीर का ज़िक्र आता है तो अल्लाहु अकबर एक मरतबा पे कह ले, उसके बाद इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र तो हदीसों में आता ही है, बकसरत 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। एक और दुआ, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये पढ़ लिया। अब उसके बाद मुख्तसर सी कोई दुआ मांग ले, दुआ के जो आदाब हैं उनके मुआफ़िक मुख्तसर सी दुआ मांग ले। अब उसके बाद फिर अगर सुन्नतें हैं तो अब चाहे पहले सुन्नतें पढ़ ले फिर तस्बीहात पढ़ ले, या पहले तस्बीहात पढ़ ले फिर सुन्नतें पढ़ ले, बहरहाल 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33, 33 और 34 सो हो गया। उसके अलावा और भी कई चीज़ें पढ़ने की हैं, आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें, और अगर फजर है या मगरिब है तो फिर और भी मज़ीद चीज़ें पढ़ने की हैं जो सुबह शाम की दुआओं में आ जाता है वो पढ़ ले इंसान। ये बुनियादी चीज़ें मैंने बता दी जो फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़नी है। अच्छा, फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीह या सुन्नत क्या पढ़ें? अच्छा, ये इस लिहाज से सवाल है, दोनों राय हैं। आम तौर पर उलमाए हनफिया की राय यह है कि सुन्नतें पहले पढ़ें, तस्बीहात बाद में पढ़ें। आम तौर पर उलमाए हनफिया की यही राय है। बाज़ मशायख की राय यह है कि पहले तस्बीहात पढ़ लें फिर उसके बाद सुन्नतें पढ़ें। दोनों में कोई हर्ज नहीं है, दोनों पर अमल किया जा सकता है। पहले तस्बीहात पढ़ के फिर सुन्नतें पढ़े, या पहले सुन्नतें पढ़ के फिर तस्बीहात पढ़े, कोई हरज नहीं है, दोनों मुनासिब है, दोनों ठीक है। अक्सर की राय यह है कि पहले सुन्नतें पढ़ी जाएँ और उसके बाद फिर तस्बीहात पढ़ी जाएँ, लेकिन अमूमन उसमें होता है कि तस्बीहात छूट जाती हैं। सुन्नतें पढ़ ली इंसान निकलना शुरू हो गया, तस्बीहात रह जाती हैं। पहले तस्बीहात पढ़ के फारिग हो गया फिर सुन्नतें पढ़ी तो तस्बीहात की पाबंदी हो जाती है। आम तौर पर तजुर्बा यह है कि ऐसे ही होता है। ये सवाल ये है, वही मैंने जो हदीस की तशरीह की थी, यहाँ सवाल ये है कि और भी बच्चों ने बचपन में कलाम किया था। यहाँ हदीस में आता है कि तीन ने कलाम किया, इसलिए मैंने बताया बनी इसराइल में, तो बनी इसराइल के तीन बच्चों ने बात की, उसके अलावा दूसरे बच्चों ने बात की वो अलग है। तो ये बात सही है जो सवाल में है, ठीक है कि और बच्चों ने भी कलाम किया है। सवाल ये है कि कुछ शाफ़ी लोग फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद तस्बीह और आयतुल कुर्सी पढ़ने पर इसरार करते हैं। इसरार किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। हदीसों में फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीहात का जिक्र भी मिलता है, और सुन्नतें जो हैं वो फ़र्ज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, फ़र्ज़ का को मुकम्मल करने ही का ज़रिया हैं। बहरहाल यही है, जैसे मैंने बताया आमतौर से हनफिया का अमल जो होता है, अक्सर हनफिया का अमल वो पहले सुन्नतों का फिर तस्बीहात का, दूसरे हजरात के यहाँ पहले तस्बीहात का है फिर सुन्नतों का है, दोनों में कोई हरज नहीं, जिस पर भी इंसान अमल कर ले। इसरार किसी पर नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर सजदे सहू करना भूल गए मुसल्ले पर बैठे बैठे उर्दू में दुआएं मांगते हुए याद आया, अलबत्ता नमाज तोड़ने वाली दूसरी कोई चीज़ नहीं की, सजदे सहू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, सवाल यह है कि अगर कोई शख्स एयरपोर्ट पर है, गुसल की हाजत है और गुसल करना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़ने के लिए क्या तयम्मुम कर सकते हैं, और क्या इस नमाज को दोबारा गुसल की सहूलत हो जाए तो क्या इस नमाज की कज़ा करना होगा? असल यह है कि एयरपोर्ट पे गुसल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ज़रा ये शुबे की बात है कि क्या मुमकिन है या नहीं है। मुश्किल तो है लेकिन मुमकिन है या नहीं है, यह है सोचने की बात। शरी लिहाज से इंसान उसका मुकल्लफ है कि गुसल करे या मुकल्लफ नहीं है, ये चूंकि फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल है। बाज़ एयरपोर्टों पर तो सहूलत होती है, बाज़ जगहों पर कुछ रकम दी जाती है, लाउंज होते हैं, वहाँ जाने के लिए पैसे लगते हैं और पैसे देकर अंदर जाकर इंसान गुसल कर सकता है। बहरहाल चूंकि हमें नहीं पता कि हमने पूरी कोशिश की या नहीं की, इस वजह से अगर इंसान ज़ाहरी एतबार से ऐसा लगता है कि अभी गुसल करना मुश्किल है, तयम्मुम कर ले, और ज़ाहिर इस्तिंजा वगैरह करता है तो वुज़ू भी कर ले। تیمم بھی کر لیں اور وضو بھی کر لیں، ایک احتیاط والی صورت بتا رہا ہوں، تیمم بھی کر لیں وضو بھی کر لیں اور نمازیں پڑھ لیں، جب غسل کی سہولت ہو تو اس وقت دوبارہ پھر نمازیں دہرا لیں، یہ سب سے زیادہ احتیاط والی صورت ہے۔ ایئرپورٹ میں بھی وہی بات ہے، اور پلین میں تو تیمم، بظاہر تیمم بھی مشکل ہے، اگر تیمم بھی نہ ہو سکے تو پھر تو نماز قضا بعد میں پڑھنی ہی پڑھنی ہوں گی۔ یہ مسئلہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت پیش آ جائے کہ انسان کے پاس تیمم کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یعنی مٹی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جسے تیمم کر سکے، پلین میں تو عام طور سے تیمم کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی، تو اس صورت میں انسان نماز نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، یا تو غسل ہوتا یا تیمم ہوتا، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پاک نہیں ہے، جب پاک نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی صورت میں انسان صرف بغیر نیت کے، جس کو کہتے ہیں تشبہ بالمصلین، نمازیوں کی صرف مشابہت اختیار کر لے، یا اللہ میں نماز پڑھنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن یا الہ العالمین میں صرف یہ ظاہری طور پر نماز کا جو وقت ہے اس میں نماز کی ایک شکل اور صورت بنا رہا ہوں کہ قیام کر لیا اور رکوع میں چلے گئے اور رکوع سے اٹھ گئے، تو نمازیوں کی مشابہت اختیار کر لے اور بعد میں جب پاکی حاصل ہو جائے تو اس وقت نماز قضا پڑھ لے۔ آج شام کو درود شریف اور دعا کا وقت ہم نے بدلا تھا، گزشتہ مرتبہ اعلان ہوا تھا کہ 8:30 بجے، تو آج انشاءاللہ 8:30 بجے درود شریف اور دعا ہوگی۔ جگ میں پانی ہے، اس میں ہاتھ ڈال کر وضو کے لیے چہرہ دھویا، دوبارہ اسی جگ میں ہاتھ ڈبا کر پھر، ہاں یعنی اسی میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں دوبارہ، کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے کہ ایک مرتبہ ہاتھ دھل گیا، اب اس ہاتھ کو دوبارہ بار بار اس میں ڈالیں چہرہ دھونے کے بعد، پھر دوبارہ ہاتھ اس میں ڈالیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر رات کو 8:30 بجے جمع ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ہاں وہ جو جگ والا جو سوال تھا، اس میں چہرے پر جو پانی لگا تھا وہ پانی مستعمل تھا، اور وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اتنے قلیل مقدار میں اگر مستعمل پانی قطرے اس میں چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ مائع مستعمل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مقدار زیادہ ہو، اس کی مقدار زیادہ ہو اور صاف پانی کی مقدار کم ہو تو پھر اس سے وضو نہیں کر سکتے، تو تھوڑی سی مقدار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔